यारे मुसीबत दे कहने बैद अधार 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 किस लिए इस पर ताकीद की गई। ये जो मौजू के अल्फाज हैं मुख्तसर चंद अल्फाज बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए दोबारा तकरार करता मौजू इस तरह से है असरदारी असरदारी क्या है। पहला जवाब रूह है बेदारी यानी असरदारी एक ऐसी चीज है कि जो सोया पड़ा है उसको जगा देता है जो सो रहा है उसको जगा देती है जो गाफिल है उसे होशियार कर देती है। कुरान के लफ्ज़ों में वो जो मुर्दा है उसको जिंदा करता है क्योंकि कुरान ने सोयो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जिसको हम सोयो कहना चाह रहे हैं कुरान ने उसके लिए मुर्दा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। और मसलन अपने रसूल से फरमाया कि अल्लाह यशा अल्लाह जिसे चाहता है उसे सुनवा देता है उसमें और जो कब्रों में पड़े हैं क्या रसूल आप उनको अपनी बात नहीं सुना सकते। यहाँ पर कब्रों में पड़े हुए लोगों से मुराद वो नहीं है जो दुनिया से चले गए और सांस बंद हो गई और दिल धड़कना बंद हो गया और दफना दिया गया कब्रों में इसलिए कि अल्लाह के रसूल जिंदों को तब्लीग करने के लिए आए थे मुर्दों को तब्लीग करने के लिए आए थे कि मक्का के कब्रिस्तान में जाते और वहाँ जाकर मुर्दों से खिताब करके कहते मेरा दीन को कबूल कर लो नेक अमल करो। वो गए जो आए यहाँ वो मुर्दे मुराद नहीं बल्कि अल्लाह उससे मुर्दा कहता है कि जिसको अच्छी बात सुनकर जो रिस्पॉन्स देनी चाहिए वो ना अच्छी बात सुनकर नबी की दावत सुनकर अपनी निजात का पैगाम सुनकर इंसान सुनता है मतलब की बात को तो रिस्पॉन्स देता है ठीक है। आप अपने किसी पसंदीदा शख्स की आवाज़ सुने आप सुन के बाहर खड़े होते हैं बाहर खड़े होते हैं बाहर से आवाज आ रही है और कभी कभी किसी ऐसे शख्स की आवाज कान में पड़े जिसकी आप शक्ल नहीं देखना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप नहीं कोई और इसे कहते उसको बता दो घर भी नहीं है। कुरान कैसे मुर्दा कहता है कुरान उसे मुर्दा कहता है कि जो नबी की बात सुनकर दीन की दावत सुनकर जो रिस्पॉन्स देनी चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं देता। नबी हो या हमारे से नबी हो या अली हो अली हो या हसन हो हसन हो या हुसैन हो अलैहिस्सलाम जो इनकी बात सुने और जो रिस्पॉन्स बनता है वो ना दे जो रिस्पॉन्स बनता है बाद लोग रिस्पॉन्स देते हैं ठीक है कि कोई आपके पास कर्जा लेने के लिए आए मिसाल के तौर पर उसको किस रिस्पॉन्स की तवक्को है कि ये मेरा दोस्त है ये मुझे हेल्प करेगा आप रिस्पॉन्स दें कैसे रिस्पॉन्स दें कि आप भी उसे कर्जा ही मांगो बजाय उसका तकाजा पूरा करने की अपना तकाजा उसके सामने असरदार दो किस्म के होते हैं हमारा मौजूद असरदारी है असरदार दो किस्म के होते हैं हमने देखना है कि हम कौन से ग्रुप के हैं। एक असरदार वो है कि जो हकीकी आज़ादार किस माना में कि उसका सारा हक हुक्म ये है कि इमाम मेरा मज़लूम इमाम मेरा सब कुछ दीन की राह में कुर्बान कर देने वाला इमाम मैं उस ज़माने में नहीं था, मैं इस ज़माने में हूँ, तो मेरा इमाम मुझसे क्या चाहता है। एक जुमला समझे आप, मेरा इमाम मुझसे क्या चाहता है। हल मिन नासिरिन यंसुरुना, ये जो सदा थी ये असल में हुसैन खतरे में नहीं थे, दीन खुदा खतरे में। असल में हल में खिताब में यदुबु अल हरम रसूलुल्लाह है कोई दिफा करने वाला जो हरम रसूल का दिफा करे। ये हरम रसूल कौन लोग हैं? ये हरम रसूल वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने उम्मत से फरमाया था कि ये मेरे अहले बैत कभी अल्लाह के कुरान से जुदा नहीं होंगे। बस जब अहले बैत खतरे में है यानी कुरान खतरे में, और जो कुरान खतरे में है यानी दीन खुदा खतरे में। अहले बैत की ना कोई ज़ाती दोस्तियाँ होती हैं और ना कोई ज़ाती, तो बच्चों को मारे, अहले बैत की ना दोस्ती ज़ाती है ना उनकी दुश्मनी ज़ाती है। कैसे? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से सवाल करें, कि वो हमें अपने जन का तारुफ दे।
ऐसा कबूल किया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया
जब तक के तुम्हारी सारी दोस्तियां और तुम्हारी सारी दुश्मनियां अल्लाह की जात की खातिर ना हो जाए। जब तुम्हारी दुश्मनी हो तो खुदा की खातिर, और तुम्हारी दोस्ती हो तो तब तुम्हारे ईमान की कमाल की शान। बस आजादारी, हकीकी आजादारी क्या है? रूह दिल बेदारी, यानी आजादारी सोए हुए को बेदार करेगी और गाफिल को होशियार करेगी। किसके बारे में? अपने दीन के बारे में। किसके बारे में? आज के दौर में सैयदुश्शुहदा क्या तकाजा कर रहे हैं आजादार से अपने, उसके बारे में उसे खबरदार करें, होशियार करें कि बेदार करें। और अगर आजादारी ऐसी हो जाए कि इंसान को यूं लगने लगे कि मेरा मामला क्योंकि मैं काले कपड़े पहनता हूं, क्योंकि मैं अपने सीने पे और सर पे हाथ मारता हूँ मातम के लिए, क्योंकि मैं जलू से अजाब शिरकत करता हूँ, इसकी वजह से मेरा मामला तमाम इंसानों से जुदा हो गया है। किस माना में? इस माना में नहीं कि मैं दूसरों से ज्यादा जिम्मेदार बन गया हूं, बल्कि इस माना में कि ये काम करने से मैं बाकी
करो और बाकी तुम्हें किसी चीज की जरूरत
नाम पर कोई ऐसी फिक्र अपने जहन में पाल रहा है, अगर तशय्यों के नाम पर कोई ये फिक्र अपने जहन में पाले बैठा है कि मैं वो जिंदगी ना गुजारू जिस जिंदगी की तरफ मुझे मेरे आईना ने रहनुमाई की, मेरी जुबान कैसी हो, मेरा किरदार कैसा हो, मेरा अखलाक कैसा हो, मेरे आहदाफ जिंदगी कैसे हो, ये इससे गरज ना रखे, बल्कि ये समझे कि ये चंद काम कर लेने का सबब, इसका नतीजा ये होगा कि दो नतीजे होंगे, एक तो दुनिया में मेरी मंदे और मुरादें सारी पूरी होंगी, ठीक है, और दूसरा क्या नतीजा होगा, क्यामत के दिन मुझे टच कोई नहीं कर सकेगा, क्यामत के दिन मैं बख्शा करूंगा। ये लेना चाहता है इन इन आमाल से, मातम से, मजलिस से, आजादारी से, जुलूस में जाने से, ज़ियारत अरबईन से, ज़ियारत आशूरा से, ये लेना चाहता है, अपना मफाद लेना चाहता है, जो वो तकाजा कर रहे हैं वो भी लेना चाहता है, तवज्जो करें, जानना भी नहीं चाहता कि उनका तकाजा क्या है। जब भी आता है अपनी शॉपिंग लिस्ट पेश कर दे, अपनी आरज़ुओं का जब घंटा लेकर आता है, गठरी बांध के लाता है, दुनिया में ये चाहता हूं मौला, आखिरत में ये चाहता हूं, लेकिन आप ना बोलिए ना आप क्या चाहते हैं, मेरी ख्वाहिशात आरज़ुएं सुनिए, अपनी आरज़ू ना बताइए। इंशाल्लाह समझा पा रहा हूं, ये जो समझता है ये आजादारी सोए हुए को तो क्या जगाएगी, जो जाग रहा है उसको भी सुला देगी, बल्कि मार वो मुर्दा जिसे कुरान मुर्दा कहता है वो मुर्दा हो जाता, क्यों, इसलिए कि नाम हुसैन को मुर्दों में जान डाल देता था। ये वो शख्स है कि जो नाम हुसैन सुनता है, 10 दिन सुनता है, मुहर्रम और सफर में सुनता है, लेकिन इसके अंदर बेदारी की रूह नहीं आती, इसको इतनी खतरनाक बीमारी लगा दी, जो बर्बाद, ये इतनी खतरनाक बीमारी, याद रखे किसी फिरौन के नाम पर शैतान नहीं लगाता, कहे मूसा को छोड़ फिरौन को मार, शैतान नजर करता, कहे नमरूद को पकड़ इब्राहिम को छोड़, शैतान नहीं करता, कहे मुजाहिद को ले ले रसूलुल्लाह को छोड़, ऐसा काम कहे यजीद को पकड़ हुसैन को छोड़, इतना बेवकूफ नहीं है, बहुत तजर्बेकार है, सारे नबी भुगताए शैतान ने, आप और मेरा कोई तजर्बा ही कुछ नहीं हो सकता, बहुत तजर्बेकार, वो जानता है कि ये जो दिल में अकीदत रसूलुल्लाह लिए हुए, ये जो दिल में अकीदत मौला अली लिए हुए, ये जो दिल में मोहब्बत और अकीदत और इश्क अहले बैत लिए हुए, आप समझने के लिए बैठे। अगर मैं आपसे सवाल करूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम जो अपने आप को मसीह कहते थे, हजरत ईसा के बाद दोबारा हुए या दोबारा नहीं, आप क्या जवाब देंगे? जी किसी पर शक भी हो तो कुरान मजीद ने उनकी गुमराही की गवाही दी, ठीक। सवाल नंबर दो, मसीही हजरत ईसा की मोहब्बत में गुमराह हुए या हजरत ईसा के बाद उनके बुग्ज में गुमराह हुए? जी گمراہ ہے, کوئی شک نہیں. کوئی اللہ کے نبی کی آگ کا بغض رکھے, شیعہ سنی کتابیں چیخ چیخ کے دوائی دے رہی ہے کہ جو عید کے ساتھ بغض رکھتا ہے وہ جاہلی ہے. شیعہ سنی دونوں ایک معاملہ ہے, ہدایت پر امامت یہ الگ, لیکن حب پہ اہل بیت رسول اس کے بارے میں شیعہ کتابیں اہل سنت بھائیوں کی کتابیں دونوں کا اجماع ہے کہ جو آل رسول سے بغض رکھے وہ مومن نہیں. تو بغض والا تو پکا ہوا ہے. مسئلہ کہاں پر سنجیدہ ہے, غور کرنے والا ہے, محبت. تو میں نے عرض کیا خدمت میں سوال کیا, حضرت عیسیٰ کی قوم بغض میں گمراہ ہوئی ہے اپنے نبی کے یا حب میں؟ آپ کہتے ہیں جی حضرت عیسیٰ کے بغض میں ان کو کہا کہ اتنے بلند ہیں عیسیٰ کے اللہ, کہ عیسیٰ کے بغض میں کہا کہ عیسیٰ کی محبت میں جی. چونکہ بغض والا تو جو مقام آلریڈی ہے اس سے بھی گرانے کے چکر میں, لیکن حب والا بڑھانے کے چکر میں, ٹھیک ہے. تو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا, قرآن کے دو لفظ استعمال کیے, ایک تو کہتے تھے اللہ کا بیٹا اور ایک کہا خود اللہ, کیونکہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ اور روح القدس ہولی گھوست, ٹھیک ہے, یہ تین ہے لیکن ایک ہی ہے, ایک ہے لیکن تین ہے, لیکن تین نہیں ہے ایک ہی ہے, عجیب. اور کوئی پوچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا تو چیز ایک ہوتی ہے اور یا تین ہوتے ہیں, تو کہتے تھے یہ عقل کی بات نہیں ہے, یہ عقل سے آگے کی بات ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں عقل کے بعد موجود ہوتی ہے, عقل کے بعد کیا ہوتا ہے, موجود ہوتی ہے, گدے کی موجے اجدر بجے جا کے چڑھ لے گدا, ٹھیک ہے. اس معنی میں عقل کے بعد موجود ہوتی ہے, کیونکہ عقل تو انسان کو قواعد و ضوابط کا, قوانین کا, شریعت کا, آرام کا, حلال کا پابند بناتا ہے. تو محبت کے معاملے میں شیطان, توجہ فرمائیے, اس محبت کے نقطے کو استعمال کرتا ہے. جن کو مولا علی سے بغض تھا ان کا تو بیڑا اس طریقے سے غرق کیا اس نے, لیکن جن کو مولا علی سے محبت ہے شیطان کو چھوڑ دے گا, شیطان کو نہیں چھوڑے, بلکہ ان کو دیکھ کر تو شیطان کے منہ میں زیادہ پانی ہے کہ یہ تو بدبختوں کو گمراہ کیا, تو یہ تو ہیں ان کو گمراہ کرو تب مزہ آئے. نام لے رہے ہو رسول کا ہو گمراہ, نام لے علی جیسی ہستی کا ہو گمراہ, نام لے حسین کا کہیں ان کو گمراہ. لہذا آج کے زمانے میں سب سے پہلے پہچان کی اور شناخت کی ضرورت ہے. یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نہ میری نیت ہے, نہ ارادہ ہے, نہ میں چاہتا ہوں, نہ اس کا فائدہ ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ پہ ٹھوس رہا ہوں. میں نہیں کہوں گا جو حلالی ہوگا وہ مانے گا, جو حلالی نہیں ہوگا نہیں مانے گا, یہ بہودہ بات میں نہیں کروں. چونکہ دین کے معاملے میں اللہ نے عقل دی ہے, سمجھو تو عقل سے سمجھو, کچھ قبول کرنا ہے تو عقل کے ذریعے کرو, اور کچھ نہ کرنا ہے تو بھی عقل کے ذریعے, ٹھوس کے ذریعے, اور حرامی حلالی بنا کے, اور یہ لانتی ہوگا اور یہ ہوگا, اس قسم کی بہودہ باتوں سے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی, دین میں کوئی زبردستی نہیں. اللہ نے رسول نے فرمایا کل انھا تذکرہ, اے رسول خبردار یہ قرآن تو ایک یادہانی ہے, فمن شاء ذکرہ, جس کا جی چاہے اس کو قبول کرے, جس کا جی چاہے قبول کرے. رسول نے کہتے تھے او مکے والوں جس نے میری بات نہیں مانی وہ رہا, یہ بات کر بیٹھ گئے. جب کہنے والے کے پاس عقل اور شعور کو قائم کرنے والی دلیل نہ ہو تو پھر وہ اس قسم کی بیہودہ بات کرتا ہے. مجھے فرمایا اصل حکم ہے جو قرآن مجید میں ہے، اور وہ ہے لا اقرار فی الدین، تمہارے سامنے نظریہ رکھا ہے، اس کے دلائل رکھے ہیں، عقل تمہارے پاس ہے، سوچو، چاہے تو قبول کرو چاہے تو قبول نہ کرو۔ لا اقرار فی الدین، ماں فرمائے اس کی دلیل بھی دی، کیوں زبردستی نہیں ہے؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، آپ نے اپنا رسول بھیج کر، یہ قرآن بھیج کر ہدایت اور گمراہی کو یقیناً الگ کیا کر کے تمہارے سامنے رکھ دیا، اب زبردستی کی ضرورت کیا؟ آپ نے تمہیں بتا دی ہے، یہ تمہیں مزیدار ڈش لگ رہی ہے لیکن ہے زہر سے، اور یہ تمہیں زیادہ مزیدار نہیں لگ رہی لیکن یہ غذائیت سے بھرپور ہے۔ امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے کیا فرما رہے ہیں؟ جس کا جی چاہے ہمارے ساتھ، جو یہ کر سکتا ہے، جو اپنا خون بہا سکتا ہے اس راستے میں، فلیرحل معنا، ہمارے ساتھ آ رہا، ادھر لڈو کھانے نہیں جا رہا، لنگر کرنے نہیں جا رہا، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو اپنے خون کو بہانے کی جرأت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ۔ کلیئر بتایا تھا، اوپر پردے بھی ڈالے کہ ٹرک کر کے لوگوں کو ساتھ ملائے، اور نہ اللہ کے نبی ٹرک کرتے ہیں لوگوں کو، نہ وارثان نبی لوگوں کو ٹرک کرتے، وہ بات سامنے کھول کر رکھتے۔ بس پہلا حصہ میں نے عرض کیا، واپس آؤں، موضوع کو بیان کر رہا تھا، ابھی میں اس آیت کی طرف نہیں آئی کہ جو آیت اکثر آپ نے سنی بھی ہوگی، اور سنی بھی ہوگی واقعی کربلا کے تناظر میں، سورۃ البقرہ کی آیت 155، انشاءاللہ ہمارے پاس دن ہے تفصیلی بات کریں، لیکن میری خواہش ہے کہ آپ سمجھیں جو آپ سے کہیں، توجہ کریں، جو آپ سے کہیں سوچنا نہیں ہے، ماننا ہے، سمجھ لیں کہ خود بھی جانور ہے، آپ کو بھی جانور بنانا چاہتا ہے، خود بھی جانور ہے، آپ کو بھی جانور، کیوں؟ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندے، نشانیاں رحمان خود بیان فرما رہا ہے، بتاتے بتاتے اپنے بندوں کی، اپنے خاص بندوں کی نشانیاں بتاتے بتاتے ایک آیت میں کیا فرماتا ہے؟ والذین، اور وہ ہیں لوگ، وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، کہ ذرا اللہ کا لب و لہجہ دیکھ لیں اور الٹے سیدھے بندوں کا لب و لہجہ دیکھ لیں، پھر ذرا پرکھنے کی کوشش کریں الہی بات کیا ہوتی ہے اور غیر الہی شیطانی بات کیا ہوتی ہے۔ فرما رہے اللہ سب سے زیادہ اندھے اور بہرے ہو کر ان آیات پر نہیں گرتے، भी अपने अक्ल और शऊर के साथ कबूल करें। तो ये आखिरी याद है, खुदा अपने कलाम के बारे में कह रहे हैं, इस पर भी हाथों की तरह न गिरो, पैरों की तरह न गिरो, बल्कि कुरान की कितनी आयात है गिन के देखिएगा। आपके पास एप्लीकेशन हो कुरान मजीद की अरबी में सर्च करने की तो देखिएगा, ताकिलून लिख के फिर देखिए कितनी जगह पे अल्लाह ने फरमाया अफला ताकिलून, अफला ताकिलून, अफला याकिलून, क्या वो अकल इस्तेमाल नहीं करते, क्या वो अकल इस्तेमाल नहीं करते, अफला ततफक्करून, क्या तुम फिक्र नहीं करते हो, इन फी ज़ालिका लआयात लिउलिल अल्बाब, बेशक हमारी इस बात में साहिबान अक्ल के लिए निशानी है। तो कहता सोचो ना, अल्लाह कह रहा साहिब अक्ल के लिए निशानी है, कहता सोच ही नहीं, उतना नहीं है, इन फी ज़ालिका लआयात लिकौम यतफक्करून, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो तफक्कुर करते हैं, फिक्र करते हैं, अक्ल जब मूव करती है, हरकत करती है, उसे फिक्र कहा जाता है, हरकत वाले अक्ल को फिक्र कहते हैं। तो कुरान चीख चीख के कह रहे अक्ल इस्तेमाल करो, फिक्र करो, समझो, लेकिन एक तबका दीन का नाम लेने वाला ऐसा पैदा हुआ कि जो पूरा दीन फौसले की हालत में है, और अगर कोई सवाल करता है तो कहते हैं सोचने की बात नहीं है, कि सिर्फ मानना होता है, पूछना नहीं होता। इस खाएं तबके को पहचानो, आपसे सवाल करें कि फलसफा आजादारी क्या है, कहेगा मेरी दिल कहां अवतार है कि हम ये जान सके कि हुसैन करबला जाने का मकसद क्या था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला जाने का मकसद क्या था। लफ्ज़ बड़े खूबसूरत है, लफ्ज़ बड़े बज़ाहिर हकीकत बंदा है, कहा हुसैन की सोच और कहा तेरी मेरी सोच, हम इकरार कर सकते हैं हुसैन क्यों करबला गए, ये खूबसूरत पैकेज में आप हुसैन थे, आपकी अकीदत और मोहब्बत जो इमाम हुसैन की आपके दिल में, उसकी आड़ में तब्दील करके फिर बदले, आप सोचना नहीं पाते। लिहाजा ये तबका जो इस किस्म की बातों का शिया है, वो जब भी आप ऐसी बात करें तो वो लड़ तो सकता है, गाली तो दे सकता है, बदतमीजी तो कर सकता है, मुकस्सर और इस किस्म के अलकाब तो दे सकता है, लेकिन दलील से अपने मकतब को डिफेंड नहीं कर सकता, दलील से किसी के पास तब्दील नहीं कर सकता। आप उनसे पूछें कि भाई आपने अगर दूसरों को बताना है, कोई दूसरा आपसे सवाल करे, ये तुम क्या कर रहे हो, ये हर साल तुम लोग इकट्ठे हो जाते हो गली गली पूछे पूछे, इतनी तकलीर होंगी, इतना बातों को तो किसकी कर जो नहीं जानता। आप उसे क्या जवाब दोगे, हम अपने मौला हुसैन की याद में। वो सवाल करता है मौला हुसैन कौन थे, आप बताते हैं हमारे रसूल के नवासे से, अच्छा उन्होंने क्या किया कि तुम इतनी ज्यादा उनकी याद बता रहे हो, आप उसको जवाब देंगे सोचना नहीं है पाने का, पाने का जो सोचता है अगर इस्तेमाल करता है वो कभी नहीं माने। कितनी बड़ी कियामत है कि अल्लाह की किताब, वो किताब जो अल्लाह ने कभी फरमाया कुरान है मैं कभी जुदा नहीं होंगे, वो कुरान हर दूसरी आयत में अकल की तरफ आपको दावत दे रहा हूं, सोचने की तफक्कुर की दावत दे रहा हूं, और आपने अपने मकतब के ऊपर ये लेबल लगा दिया हो कि सोचना नहीं मांगना है, आप इसको कभी नहीं कर सकते। फिर आप उससे सवाल करें कि भाई अगर हम उनको नहीं बताएंगे दूसरों को कि इमाम ने ये करबला की तहरीक ये किया, ये क्यों किया, ये इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी, अगर हम उनको दलील नहीं देंगे तो फिर उनको दावत कैसे दें, आपको क्या जवाब मिलेगा, दावत देने का इन मुर्तदों को फायदा ही होगा। ये ऊपर ही लिख दिया गया था आसमानों में, ठीक है, कौन जानने वाले हैं कौन मानने वाले नहीं। कुरान मजीद क्या फरमा रहा है, अल्लाह तुम्हें इस मौत और हयात के दरमियान आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतरीन है, ये क्या कह रहा है यहाँ की आजमाइश फरमाइश, रसूल की जिम्मेदारी थी तबलीग करना, हत्ता भी पत्थर भी खाना, इमाम हुसैन की जिम्मेदारी थी, मौला अली की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज के अस्तित्व के मानने वाले की कोई तबलीग की जिम्मेदारी? एक अजीब और गरीब तरीके से ये दास्तान लंबी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इनकी सारा दलाल है। दिमागों को माउस करने के लिए और सोचने से रोकने के लिए क्या क्या फंदे डाल दिए गए और क्या क्या जंजीरें डाल दी गई हैं ताकि अकल हरकत न हो, और जब अकल को लौ लग गया फिर जो भी चीज मोहब्बत अहले बैत के नाम पे राज कर दी जाए उसके बाद आप इनको रोक कर देखिए, आप इनसे पूछ कर देखिए, जो हशर करेंगे वो देख कर सलाम पढ़े। इंसान के अंदर बेदारी की रूह डाल दी। हुसैन का नाम सुनकर झटका लगा, उसे पता चलेगा कितने बुलंद मर्तबे वाला हुसैन। सारी दुनिया जिस जन्नत की तलबगार है उस जन्नत का सरदार हुसैन। नबी को जिसके कुर्ब से, जिसकी खुशबू से, जिसके बदन के लफ्ज से रहमतुल लिल आलमीन को सुकून मिलता है वो हुसैन। जिस हुसैन को थोड़ा सा लिबास उलझने की वजह से गिरता देखें, खुतबा जारी नहीं रख सकते और मिंबर से उतर आते हैं खुतबा छोड़कर, वो हुसैन। इतने मकामात वाला हुसैन, ऐसा क्या मसला हो गया इसके बदल को करबला की तपती रेत पर न सिर्फ जिबा किया गया, न सिर्फ जख्म किया गया, बल्कि इसके इस बदन ने जमीन पर घोड़े तोड़ा, जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत की नमक है उसके जहन में सवाल पैदा होता है, ये क्यों? और जैसे ही हुसैन को सोचेगा तो वो होगा जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बेशक मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है, रास्ते में अंधेरा तुम्हारे, मेरे हुसैन को सोचो रोशनी हो जाए, मेरे हुसैन के बारे में गौर करो रोशनी हो जाएगी, अंधेरे छट जाएंगे। और जब अंधेरे छटेंगे तो तुम्हें वो सफीना भी दिखाई दे जाएगा जो सफीना तुम्हारी निजात का जरिया है, जिसमें सवार होना तुम्हारी निजात का जरिया बन जाएगा, उसी जन्नत तक, उसी रज़ाए परवरदिगार को पा लोगे, जो दर हकीकत हर इंसान की मंजिल मकसूद। मैं सादा सी मिसाल देने लगा हूं सिर्फ समझाने के लिए। अगर एक बाजार में आप इस्तेफादे की बहुत अच्छी चीज है चराग लैंप बल्ब आ जाए और वो बल्ब इतना अच्छा हो, इतना मुफीद हो कि हर कोई उसके तरफ दौड़े, जो देखे उसकी खसूसियात का पता चले दौड़े, मैं मैंने यही है, मैंने यही अपने घर लेके जाए, मुझे दूसरी चीजें नहीं चाहिए, तो फिर बेईमान लोग क्या करेंगे? वो उसकी कॉपी बनाए ताकि नाम उसका इस्तेमाल करे और चीज अपनी बेचे। तो जो फरमाए ये शैतान का नाम उसका इस्तेमाल करे, देखने वाला समझ रहे ये वही चराग है जिसको मैं घर ले जाना चाहता, लेकिन घर लेकर कोई और चीज जा रहा। इसी तरह रसूलुल्लाह के नाम पर, मौला अली के नाम पर, अहले बैत के नाम पर ये वो चला सब बात पढ़ी भगवान दूसरा हिस्सा इस मौजू का था जिसको इंशाल्लाह कल मुताबिक को फीक दिन को डिस्कस करेंगे तो सारे दिनों में आता रहे जब बेदार हो गया इंसान तो फिर काम क्या करवाती है आज़ादारी नुसरत इमाम अपने इमाम की मदद कोई ये न कहे कि उनको हमारी मदद की क्या जरूरत है कि जो मदद का लफ्ज़ है इसके कई इस्तेमाल हैं इमाम की मदद जिसको समझ नहीं आ रही वो जाकर कुरान देखे ठीक है आइमा तो फिर नियाजमंद है अल्लाह की ज़ात के मोहताज है अल्लाह के मखलूक है अल्लाह से मांगते हैं तो जो बता रहे हो लेकिन वो जो इनका खालिक है वो अपने कुरान में कह रहे या अय्युहल्लज़ीन आमनू ऐ साहिबान ईमान इन तंसुरुल्लाह अगर तुम अल्लाह की नुसरत करोगे अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे यंसुरकुम तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा और युसब्बित अक़दामकुम और तुम्हें साबित कदम कर क्या समझ में आता है साइंस एक मदद तुमने कर दी वो कह रहे हैं जो किसी का मोहताज नहीं ये कहने का तरकीब दिलाने का आकाश जैसे कोई करोड़पति किसी गरीब से आदमी से कहे कि मेरी 10 रुपए दे के जरा हेल्प कर दो तो लोग देखने वाले क्या कहेंगे कि ये करोड़पति आदमी है और इससे 10 रुपए या 100 रुपए की हेल्प मांगे तो वो असल में हेल्प नहीं मांग रहा होगा वो किसी काम की तरकीब दिलाना चाहता है सारी दुनिया को पता है कि इस करोड़पति को 100 रुपए की जरूरत नहीं है लेकिन उस 100 रुपए दिलवाने के जरिए उसके अंदर कोई खूबी पैदा करना चाहता है उसको कोई अजर और इनाम देना चाहता है उसको किसी मंजिल पर पहुंचाना चाहता है इसे जरूरत तो तुम अगर अल्लाह की मदद करोगे कैसे कि जब तुम्हें पता चले कि अल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत है घर भी बैठना बाहर निकल आना अगर तुम अल्लाह की खातिर निकल आओ जितना मर्जी खौफ हो जितना मर्जी दुश्मन ताकतवर हो अगर तुम खुदा की खातिर निकल आओगे मैदान में तो फिर दूसरी बात अल्लाह तुम्हें कह रहा है कि उस मैदान से अल्लाह तुम्हारे कदम उखड़ने नहीं वो तुमने करना है कि अलग इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम नुसरत इमाम कैसे होगी नुसरत दीन उसको आप अल्लाह की मदद कहिए कुरान के लफ्जों में और उसको आप नुसरत इमाम और वो नुसरत इमाम क्या है कि कुछ लोग ये सोचकर बैठे हैं कि जो कुछ करना है वो इमाम ने आकर करें ये नुसरत इमाम नहीं कर सकते नुसरत इमाम कौन कर रहा है कि जो ये सोचे कि इमाम जब आएंगे क्या क्या चीज़ें मुआशरे में देखना चाहेंगे और क्या क्या चीज़ें नहीं देखना चाहेंगे और वो फिर कोशिश करें अपनी ताकत के मुताबिक कि जो इमाम देखना चाहते हैं मैं अपनी ताकत के मुताबिक दिखाने की मुआशरे में लाने की कोशिश करूँ और जो इमाम नहीं देखना चाहते उन चीज़ों को अपनी जात से शुरू करके फिर मुआशरे में उन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूँ ये इमाम के लश्कर में आज भी खड़ा रहे लेकिन अपने इर्द गिर्द के माहौल की आपको कोई परवाह ना जब इमाम आए तो ऐ अल्लाह मैं मर भी गया हूं मुझे भेजना मैंने तलवार खींची हो तूने अभी क्या किया वो तो जब आएंगे उस वक्त देखी जाएगी तू जो तैयार है मुर्दा कब्र से उठ के आकर तलवार निकाल कर इमाम के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़ने को तैयार है आज तक से बस क्यों नहीं होता आज अपनी जुबान को झूठ से नहीं रोक सकता तलवार से क्या लड़ेगा तू झूठ रोकने के लिए अगर आज तू खुद हराम से बाहर नहीं आ सकता तो इमाम जब हराम को खत्म कर रहे होंगे तो तू कैसे तलवार लेकर इमाम के साथ आएगा जिसकी अपनी तबीयत में हराम रचा बसा है, वो उस वारिस रसूल का साथी ऐसे बारे चार पर इसको हम जारी रखेंगे। आजादारी बस इंशाल्लाह वाज़े है, आजादारी रूह बेदारी और नुसरत ईमान, इन तीन चार लफ्जों में खुलासा। ये आजादारी का सही रुख है और अगर आजादारी उस रुख पे नहीं डाली इसका मतलब है आजादारी का नाम है लेकिन वो जो हकीकी आजादारी है वो मौजूद है। हो सकता है जज्बात हो कुछ आरजी, लेकिन जब मैदान लगे, जब कोई धमकी मिले, जब सामने मौत दिखाई दे, मैदान सजता दिखाई दे, तो वो जज्बात गायब हो जाए और खौफ गालिब आ जाए और उस तरह अपने इमाम को तनहा छोड़ दे जैसे कूफे वालों ने सफीर हुसैन को तनहा छोड़ा। पहली मुहर्रम है और रस्म यही है कि पहली मुहर्रम को करबला के पहले शहीद का जिक्र किया जाए। कौन है सफीर हुसैन? जब कूफियों को खत लिखा इमाम हुसैन ने, बहुत सारे खत आए, ढेर लग गया, तो इमाम ने खत लिखा कूफियों के नाम और उस खत में लिखा कि मैं मकाम मुस्लिम क्या है समझिएगा। हुसैन लिख रहे हैं कि ऐ कूफा वालों, मैं तुम्हारी तरफ अपने भाई को भेज रहा हूँ। पहले भाई लिखा, फिर लिखा चचा का बेटा, फिर लिखा अपना काबिल एतमाद मुस्लिम इब्ने अमीन तुम्हारी तरफ भेजो। हुसैन किसी को अपना भाई कहे उसका मकाम क्या होगा? जो हमारे ये वो मकाम है कि बाज वो तमाम बयान करते हैं कि जब हजरत अबुल फजल अब्बास अपने दोनों शाले कटवा कर और गुर्ज खा कर जब जमीन करबला पर थे और हुसैन पहुंचे और अब्बास के सर को आगोश में लिया, तो अब्बास ने ये लफ्ज सुनना चाहा हुसैन की जुबान से और फरमाया कि हुसैन मुझे एक दफा भाई कह। मुस्लिम इब्न अकील करबला में शहीद नहीं हुए, लेकिन ये वो हस्ती है कि जब हुसैन का नाम रह गए, जब हजरत अब्बास भी शहीद हो गए, जब सारे प्यारे अपना वादा निभा चुके, करबला की लेज पर जाकर सो चुके, तो मक्तल के लफ्ज से आप उलमा से सुनते हैं, हुसैन जब खैमे से बाहर निकले, एक दफा दाएं तरफ देखा, एक दफा बाएं तरफ देखा, जब किसी को ना पाया, तो जो पहला नाम हुसैन के मुंह से निकला, क्या कर पाया? अय्या इन्ना मुस्लिम उब्न अकील, कहां है मेरा मुस्लिम? बाकी असहाब के नाम बाद में, ये रुतबा है मुस्लिम इब्न अकील का। हालात का सास है, इमाम हुसैन मुस्लिम को कूफा भेजते हैं, जनाब मुस्लिम कूफा पहुंचे, रिवायात के मुताबिक 18,000 या 25,000 तक की रिवायात है कूफियों ने जनाब मुस्लिम से बयान की। अब जब ये हालात देखे तो जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन को अपने मौला को खत लिखा और खत में एक ऐसी बात लिख दी कि जिसको बाद में याद करके रोते थे। जब जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करके धोखे से कसर इमारा लेकर जा रहे थे, तो एक दफा अचानक जनाब मुस्लिम रोने लगे। एक शख्स ने कहा, मुस्लिम मौत के डर से रो रहे हो? तो मुस्लिम ने फरमाया कि मैं मौत के डर से नहीं रो रहा, मैं तो इस बात को याद करके रो रहा हूँ कि मैंने अपने हाथों से अपने मौला को पैगाम भेजा है कि आप कूफा आ जाइए, कूफा आपको कबूल करने के लिए आमादा है और मेरा मौला हुसैन रसूल की बेटियों को लेकर कूफा की तरफ आ रहा है, काश मैं हुसैन को खबर दे दूं कि कूफा बताइए। 18,000 या 25,000 लोगों ने बैत की, जदीद को खबर हुई बसरा का गवर्नर है नईम इब्न ज़ियाद, यजीद ने उसको बसरे की गवर्नरी पर भी कायम रखा और कूफा का भी एक्स्ट्रा गवर्नर बना दिया। ये नईम सुबह शाम सफर करके कूफा पहुंचता है और लिबास ऐसा ज़ेब तन करता है जैसा बनु हाशिम का लिबास, चेहरे पर नकाब ओढ़कर कूफा में ऐसे दाखिल हुआ। मैंने आपको अर्ज किया ना कि शैतान ने जब धोखा देना होता है और शैतान के नुमाइंदों ने जब धोखा देना होता है, बादल ने जब धोखा देना होता है, वो बादल अपने असली चेहरे में नहीं आता, वो आपका लिबास पहन कर आता है ताकि लोगों को धोखा दे सके, ताकि पहचान सके, अंदाजा लगा सके कि यहाँ पे हाथ परस कितने हैं और मेरे नुमाइंदे कितने, और अपनी पॉलिसी बना सके। ये जब दाखिल हुआ नहीं, खुफियों ने समझा हुसैन आ, सलाम करने लगे, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। ये खामोशी से मसरूर इबारा किया, हालात का अंदाजा इसको हो गया, लोगों को पता चल गया कि इब्ने ज़ियाद आ गया। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर सिर्फ जज्बात और मुआफ़त ना हो, दिलों के अंदर तक ईमान ना हो, बसीरत ना हो, तो फिर कैसे कायम रहेगा। 40 लोग जो कबीलों के सरदार हैं, दूसरों के कबीलों के सरदार, वो कसर इबारत में इब्न ज़ियाद के पास और कसर इबारत के इर्द गिर्द जनाब मुस्लिम से बैत करने वाले हजारों अफराद ने घेरा डाला। यानी चंद मिनट की भी बात नहीं है कि इब्न ज़ियाद को रास्ते से हटा दें। तवज्जो फरमाइए, ये मुकदमा मसाइब है जनाब मुस्लिम, और ये जनाब मुस्लिम के मसाइब का मुकदमा नहीं है, ये सारी कर्बला का मसाइब का मुकदमा। आप तसव्वुर कीजिए, हजारों लोग मुहिब्बान हुसैन जिन्होंने बैत किए जनाब मुस्लिम से, मुसल्ला वो घेरा डालकर खड़े हैं कसरुल इमारा का, और अंदर इब्ने ज़ियाद के पास 40, लेकिन वो 40 लोग कौन है? वो जो बाहर खड़े हैं उनके कबीलों के सरदार, वजीफा खोर, नौकरियां करने वाले कि जिनको हर महीने हुकूमत की तरफ से तनख्वाहें मिलती हैं, उनके अपने लिए भी और अपने कबीलों में तकसीम करने के लिए भी हुकूमत पैसे देती है, ये इस्तेमाल काम करती है। वो उनसे कहता है कि लालच और तरक्की, कुछ लालच की मार खा गए और कुछ अपनी जानों की धमकी का खौफ। लालच क्या दिया? कहा कि जिस जिस के कबीले का, तुम में से जिस जिस के कबीले का शख्स बाहर मैंने मुस्लिम के हामियों में पा लिया, उसका वजीफा बन जाए, उसकी पेर हो जाए। और दूसरी धमकी क्या थी? एक धोखा, उसने कहा शाम से लश्कर आ रहा है, आज या कल में पहुंच जाए। कोई लश्कर नहीं आ रहा था, झूठ बोल, लेकिन डरपोक कैसे धोखा कर, शाम से लश्कर आ रहा है, जिस जिस के कबीले का बंदा मैंने मुस्लिम के हामियों में देख लिया, उन सब को अपनी तलवार से गुजार, उन सब का खून मेरे लिए कुबा। ये 40 लोग बाहर निकले और इन्होंने आए खड़े हुए लोगों के साथ क्या बातें शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे लोग उछलना शुरू। बाद लोगों की घरों से औरतें आ गई और जबरदस्ती खींच कर, रो रो कर खींच कर औरतें ही अपने घरों में ले गई, और फिर हजारों नौ से हज आए। मस्जिद कूफा जिसमें सफीर हुसैन जब नमाज पढ़ाने आते हैं, पीछे हजारों लोग नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, लेकिन अब एक ऐसी नमाज इशा पढ़ाई सफीर हुसैन ने कि जो पीछे मुड़ के देखा तो हजारों तो क्या, सैकड़ों तो क्या, सिर्फ गिनती के 30 अफराद थे।
आप जो देखा तो 30 भी नहीं, सिर्फ 10 लोग।
एक ख्वाहिश है जनाब मुस्लिम के दिल में, किसी तरह हुसैन को खबर हो जाए, किसी तरह हुसैन को खबर पहुंचा दूं मौला कुंसाना। अपने इमाम की फिक्र है, ज़ैनब आलिया उम्मे कुलसूम की फिक्र है, हुसैन की बच्ची की फिक्र है कि ये मस्तूरात कूफा की तरफ ना आए, इन बेवफाओं की तरफ ना आए। कभी इस गली में जाते हैं मुस्लिम तो अदालत कूफे की गलियों से भी पूरी तरह वाकिफ, रास्ता भूल गए। कभी एक गली قبول کر دینا، کسی طرح میری مولا حسین کو پیغام دے دینا کہ مولا حسین موسیٰ کی طرف نہ آئے، موسیٰ والوں نے بے وفائی کر دی ہے، وصیتیں تمام ہوئی، انتظار